गुज़श्ता दिनों हमने आपसे बात की थी कुछ साइंस के हवाले से, कुछ नए नए तजर्बात मुशाहदात इंसानों को हो रहे हैं और मज़हब को वो रिलेट करके या मज़हब के को बतौर चैलेंज के वो पेश भी करते हैं, हमारे हमारे से बहस भी हैं। कुछ ज़मीनी सवालात में चाहता हूँ ज़रा उसमें आपसे गुफ्तगू करूँ। हमारे आजकल बड़ा गुलगुला है, कहते हैं कि साइंस ने कोई फोर्थ डायमेंशन जो है वो अब साइंसदान दरियाफ्त कर रहे हैं, माहिरीन जो तबैयात हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो टाइम एंड स्पेस के क्वांटम से बियॉन्ड कोई इनफिनिट कोई इटर्नल डायमेंशन भी अब दरियाफ्त हो रही है, और इससे गालिबन मज़हबी लोग बड़े खुश हो रहे हैं। और हमने देखा कि जो कलीसा है और जो मसीही उलमा हैं वो इसको शायद खुदा की इटर्निटी और खुदा के सबूत के लिए कह रहे हैं कि इनफिनिट रैम का एक तसव्वुर साइंस दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं और मज़हब के मुकदमे का इस्बात हो रहा होता है और लोग करते भी हैं, तो जो नाकदीन है वो कहते हैं कि आखिर में फिर भी मज़हबी लोगों को साइंस ही का सहारा लेके दुनिया को यकीन कराना पड़ता है कि देखो ये फोर्थ डायमेंशन से हमारा खुदा साबित हो जाता है। तो इससे तो ये साबित हुआ कि फिर साइंस एक बरतर मकाम पर खड़ी है।
जो मज़हबी लोग ये करते हैं उनके ऊपर ये तबसरा करने का भी लोगों को हक है, मैंने तो कभी ये किया नहीं। यानी मेरे नज़दीक तो कुरान मजीद का जो इस्तदलाल है वो मेरी फितरत के मुसल्लमात पर मबनी है और कुरान उसको इसी तरह से पेश करता है। मैंने तो आप जानते हैं कि मीज़ान अपनी पूरी किताब लिखी है, इस तरह की किसी चीज़ का कहीं हवाला नहीं दिया। तमसील के लिए यानी बात समझाने के लिए कहीं कोई मिसाल दे दी जाए वो बिल्कुल अलग है। अब जाहिर बात है कि हमारे गिर्दो पेश की दुनिया ही से मिसालें लेना होती हैं, तो पहले हम वो मिसालें फितरत के अमूमी मुशाहदात से लेते थे, अब बाज़ मिसालें साइंस की इजादात से भी लेके पेश कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर समझाने के लिए किसी साइंसी तजुर्बे का, किसी साइंसी हकीकत का, किसी साइंसी ईजाद का हवाला देना, ये तो दुनिया भर में होगा, तमाम उलूम में होता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन मज़हब अपने मुकदमात इस तरह की चीज़ों से साबित करने का मोहताज नहीं है। मज़हब का पूरा इस्तदलाल जो कुरान मजीद ने पेश किया है वो फितरत के माने हुए हकायक पर मबनी है। जब तक इंसान की वो फितरत है, मज़हब का इस्तदलाल और उसके नतायज भी कायम है।
ठीक, लेकिन हम सब ये बात तो आप तस्लीम करेंगे ना कि जब कोई साइंसी हकीकत सामने आए और मज़हब की तफहीम से कोई मुकदमा बना हुआ है और दोनों में तजाद लगे, तो फिर ये चैलेंज होता है मज़हबी उलमा के लिए कि या तो वो ख़ुद उन नसूस और मतून पे गौर करें। इस तरह पिछले दिनों ये बहस हुई कि भाई ज़मीन गर्दिश करती है कि नहीं करती, और मज़हबी लोगों ने कहा कि जी वो तो कुरान कहता है कि नहीं करती, और साइंस ने कहा कि करती है। तो फिर कुछ उलमा बैठे और उन्होंने कहा नहीं नहीं मज़हब भी वही कहता है जो साइंस कहती है। तो चैलेंज तो बाहर कैफ है ना कि साइंस जैसी डेवलपमेंट पैदा करती है तो मज़हबी उलमा को बाहर कैफ, अगर तजाद है तो या तो उस तजाद की कोई कुरानी बुनियाद वाज़ह करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई तदबीक पैदा करनी पड़ेगी।
नहीं, असल में देखिए एक चीज़ है कुरान मजीद, उसमें और इंसानी इल्म के हासिलात में अगर वो इल्म बन जाए, यानी एक है नज़रियात वो तो रहते हैं, तो उसमें तजाद हो कैसे सकता है, तो मुमकिन ही नहीं है। इंसान बहुत से तसव्वुरात कायम कर लेता है क्योंकि कुरान मजीद खुद तो नहीं बोलता। तो आपने कुरान मजीद पढ़ा, आपने पुरानी यूनानी इल्म का मुताला किया, आपने दुनिया भर के अंदर के उलूम फ़नून पढ़े, तो बहुत से आपके तसव्वुरात होते हैं जिनको मिला के खुद आपने अपना एक इल्म कलाम बनाया होता है, उससे तादाद पेश आ जाते हैं।
अच्छा,
तो ये मज़हब में भी करते रहना चाहिए। आप जानते हैं कि मैंने जब मज़हब पर लिखा है और ख़ास तौर पर अपनी किताब मीज़ान में जब पूरे मज़हब की तफसीर की है, तो ख़ास तौर पर यह जुमला लिखा है कि इसमें फ़िक्र कलाम फ़लसफ़ा और इस तरह की चीज़ों से मज़हब को अलग करके पेश किया गया है। क्यों ये ज़रूरी है? ये नहीं कि मैं इसमें 100% कामयाब रहूँगा, हर साहिब इल्म को ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस तरह की चीज़ें हम उसके साथ मिला देते हैं तो कुछ देर के बाद वो चीज़ें इंसानी उलूम होते हैं, उनमें कोई गलती सामने आ जाती है। अगर आप उस मौके के ऊपर इसरार करेंगे तो गोया मज़हब को शिकस्त हो जाएगी। नहीं, अपनी गलती की इसलाह कर लेनी चाहिए। इसलिए मेरे नज़दीक सही बात वही है जो इब्न तैमिया ने कही है कि जैसे ही इस तरह की कोई चीज़ सामने आए तो फ़ौरन गौर करना चाहिए कि कोई हम गलत राय तो नहीं कायम कर बैठे। और इंसान अपनी गलतियों का एतराफ़ करता रहे, सही बातों को कबूल करता रहे, बार बार अल्लाह की किताब की मुराजत करता रहे, साइंस कैसे तरक्की करती है, यानी जो पहले से चीज़ें आप मान रहे होते हैं उनको चैलेंज करते रहते हैं ना, तो अल्लाह की किताब में भी अपने फहम को चैलेंज करते रहना चाहिए। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको कभी ये मुश्किल पेश नहीं आएगी, मुझे तो कभी पेश नहीं आई। और मुझे इस तरह के इक्तशाफात से कोई बहुत दिलचस्पी नहीं होती, एक आम तालिबे इल्म के तरीके पर मैं इनको पढ़ता हूँ, मुझे जो यकीन है कुरान मजीद के इस्तदलाल की बुनियाद पर اس میں ایک تنکے کے برابر نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی.
ٹھیک, لیکن آپ صاحب نتیجے کے اعتبار سے تو جو وہ میتھڈولوجی ہے وہ زیادہ کامیاب نظر آتی ہے کہ جب یہ جو ہمارے کچھ بعض مذہبی علماء سائنس کے فیکٹس کو قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں جو نان مسلمز ہیں وہ بھی مذہب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو آج سائنس جس نتیجے پہ پہنچی ہے, آج سے 1400 سال پہلے ایک کتاب پہنچ چکی تھی, تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دوسری میتھڈولوجی ہے کہ سائنس اور قرآن کے اندر آپ کوئی تطبیق پیدا کریں, تو اس سے بظاہر خارج میں تو دین کو بہت فائدہ ہو رہا ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ خارج میں دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے, یہ میرے نزدیک صحیح سوچنے کا طریقہ نہیں ہے. سوچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے کیا فی الواقع ٹھیک سمجھ لیا ہے, یہ عمل جاری رہنا چاہیے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک حقیقت آئے اور ہم نے اس سے پہلے ایک غلط تصور قائم کیا ہوا ہو, ہم اس پہ نظر ثانی کر لیں گے, اس کو دیکھ لیں گے دوبارہ. قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے, نہ وہ لوگوں کو سائنس پڑھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے. وہ فطرت کے سادہ استدلال پر اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے. انسان کو جو علم دیا گیا ہے اسی سے وہ ہمیشہ دلیل لاتا ہے, اور اس کی بنیاد پر اپنی پوری کی پوری دعوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ اس نے کام کر دیا. اب چونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے, تو اس لیے کسی جگہ پر تمثیل کے طور پر سمجھانے کے لیے اگر اس کائنات یا انسان کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ بالکل درست کہی گئی ہے. چونکہ وہ بات ایسے اسلوب میں کہی گئی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی سائنسی طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا. بات سمجھانے کے لیے کہی گئی تاکہ اس وقت کا مخاطب بھی اس کو اپریشیٹ کر سکے, لیکن اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں, تو جیسے ہی سائنسی طور پر کوئی بڑی حقیقت سامنے آتی ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک طالب علم کی طرح بہت عاجزانہ طریقے سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ ہمارے فہم کی غلطیاں جن میں اس طرح کے چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. پہلے ہم کوئی قصہ کوئی کہانی اسے قرآن بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسرائیلی قصے ہوں گے اور ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا ہے. اسی طریقے سے شاعرانہ قسم کی باتیں ہوں گی, صوفیہ کے تخیلات ہوں گے, ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا ہے. یعنی یہ ہمارا پہلے کا رویہ ہے جس کی غلطی ہے. اگر آپ نے پہلے مرحلے میں یہ چیز سمجھ لی ہے کہ آپ کو اللہ کی کتاب کے قریب رہ کر سمجھنا ہے جو کچھ بیان کرنا ہے, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیا آنے والا علم بعض اوقات آپ کے فہم کی تصحیح کرتا ہے. لیکن پھر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اس سے پہلے اپنا کوئی تصور, کوئی اپنی روایت, کوئی اپنا قصہ, کوئی اپنا خام خواہ کا تعصب میرے ساتھ وابستہ کر دیا تھا. اس طرح کی تنبیہ دنیا کے ہر علم میں ہوتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں نے کبھی نہیں کی, میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا. قرآن مجید کو اس کی بالکل پیور صورت میں پیش کرنے کے لیے ہمیشہ استدلال کرنا چاہیے, اور قرآن اپنے استدلال کے لیے خود مکتفی ہے. یعنی اس کو کوئی استدلال مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کو منواتا ہے, وہ آخرت کو منواتا ہے, اس کے لیے انسان کی فطرت کے مسلمات سے استدلال کرتا ہے. یعنی وہی حاصلات جو آپ کے باطن کے حاصلات ہیں, انہی سے استنباط کر کے وہ حقائق کو بیان کر دیتا ہے, اور اس کو اتنی سادہ وساط پر بیان کرتا ہے, ہر پیچیدگی سے, ہر کج پیچ سے بالکل بالا کر کے, کہ اس کو کسی تغیر سے کوئی تبدیلی آئی نہیں سکتی اس کے اندر.
ٹھیک,
یہ اصل میں جزوی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض موقعوں کے اوپر ہم نے کسی روایت, کسی قصے, اپنے زمانے کے علم کی بنیاد پر فرض کر لی ہوتی ہیں, تو وہ ہم خیال کرتے ہیں کہ اچھے چیلنج ہو گئی یہ چیز. اپنے فہم کی تصحیح کرنی چاہیے.